اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر اداران حسین، کیونکہ شب عاشور ہے لہذا فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھواتے، کیونکہ اپنے اجداد سے اسی سنت پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں، لیکن بس شب عاشور کیونکہ اب آغاز ہے اس قیامت کی رات کا اور اس کے بعد پھر عاشور کا دن ہے، لہذا نہیں پڑھواتے، مگر دعا ضرور کریں گے ان احباب کے لیے، ان اداروں کے لیے، ان اپنے جانباز اسکاؤٹس کے لیے، اپنے سپاہیوں کے لیے، پولیس کے سپاہیوں کے لیے، افسروں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن یہ سپاہی جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، ٹریفک کے پولیس کے جو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، میرے رینجرز کے سپاہی، میرے بھائی جو کھڑے ہوتے ہیں یہاں، اور جس نے جس انداز میں اس فرش اعضا کو بچھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ لیا ہے، ادارے ہوں، تنظیمیں ہوں، انجمنیں ہوں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے بحق شہداء کربلا ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اسی طرح بیماروں کے لیے، زخمیوں کے لیے، خاص طور پہ وہ جو 100 سے زائد زخمی ہیں کل، جو بے گناہ مرد، عورتیں، بچے، بلاسٹ جو ہوا، دھماکہ جو ہوا، اس میں جو زخمی ہوئے، جو جاں بحق ہوئے، 60 سے زیادہ تعداد اب تک پہنچ چکی ہے، جس میں رینجرز کے ہمارے جوان ہیں، سپاہی ہیں، اور تو بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن دعا کیجئے پروردگار عالم ان سب زخمیوں کو، آپ کے بیمار کہیں بھی کوئی ہے دعا کرے بحق کے بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو۔ اب میں نے عرض کر دیا کہ ان سب کے لیے میں نے دعائیں کر دی، جو بھی جس نے جس انداز میں بھی حصہ لیا ہے ان سب کے لیے ہماری یہی دعا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے دعا کے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر مادر حسین دیتی ہے، اس کا اگر خلوص سے جو بھی کر رہا ہے اس کا اجر مادر حسین دیتی ہیں، اس کا اجر اللہ دیتا ہے، اس کا اجر اللہ کا رسول دیتا ہے، اور بہترین اجر دیتا ہے، دنیا والے وہ اجر نہیں دے سکتے، جو اجر وہاں سے ملتا ہے ان بارگاہوں سے ملتا ہے، لہذا ان کے سب کے لیے دعائیں ہماری۔ اور اب ایک بات جو عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، کہ یہ تو کل بارڈر پہ سانحہ ہوا، بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں اس سے، ہم ایک تو پہلے دن سے آپ سے باتیں کر رہے تھے، آپ کے سامنے آ گیا کہ ٹارگیٹ صرف آپ نہیں ہیں، جیسے پہلے تھا نا صرف آپ ٹارگیٹ ہیں، آپ نہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا ادارے ہوں یا فوجی جوان ہوں یا رینجرز ہو، پولیس ہو، سب ان دہشت گردوں کے نشانے پر۔ لیکن پہلے مقدمتاً ایک جملہ عرض کر دوں، پھر بعد میں تشریح کروں گا کہ اب الٹا ہو گیا ہے، اب یہ دہشت گرد 20 کروڑ عوام کے نشانے پر ہے، اب یہ دہشت گرد 20 کروڑ عوام کے نشانے پر ہے۔ کیسے؟ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ ہم نے ہی سکھایا، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ دنیا نے جو سیکھا ہے نا، یہ ہم سے سیکھا ہے، ہمارے مولانا نعمان قادری صاحب، حسب دستور قدر کیا کیجیے ایسے لوگوں کی، پورے عشرے میں آپ دیکھیں مسلسل تشریف لاتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، مگر یہ اپنے احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ یہاں ہیں، اور اپنے بہت سارے، مجھے بتایا گیا کہ اہل سنت بھائی ہمارے اس فرش اعضا پہ مسلسل آ رہے ہیں، تشریف فرمائیں، جن میں سے کچھ کی طرف نشاندہی بھی کی گئی، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، کیونکہ میرا مسلک نہیں ہے، میں اپنا مسلک تو ضرور بیان کرتا ہوں، اپنے دلائل تو ضرور دیتا ہوں، لیکن کسی کی دلازاری کرنا میرے مسلک میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی خوبیاں بیان کرتے رہو، لوگ خود ہی پہچانتے رہیں گے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور پھر وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک جملہ سکھایا ہے کہ बाबा तुम्हें अहले बैत के फजाइल से फुर्सत है कि दूसरों की बातें करो? जब इतने फजाइल हैं तुम्हारे पास तो जरूरत क्या कहीं और जाने की, अपने फजाइल बयान करते रहो, अहले बैत को पढ़ते रहो। लेकिन जो बात जरूरी है समझाने की कि किस किस अंदाज में अल्लाह की नुसरत आती है, अल्लाह की मदद आती है, बताता हूँ आपको। तैयार हैं सुनने के लिए? बुलंद आवाज से सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद वाले। और देखिए मैं नारे तलब नहीं करता, जहां मुझे जोश आता है तो मैं खुद भी नारे लगा देता हूँ, वो मसला नहीं है मेरे साथ। लेकिन आज आपको खास तौर पे ताकीद कर रहा हूं कि जब भी नारा लगाइएगा, तीनों नारे लगाइएगा, जब भी लगाइएगा, अगर ऐसी बात कोई हो जाए जिसमें आपको बहुत जोश आ जाए तो नारे तकबीर भी लगाइएगा, रोज लगाते हैं आप, नारे रिसालत भी और नारे हैदर भी, नारे तीनों लगाइएगा जब लगाइएगा। सुनिए क्या हुआ कल, ब्लास्ट हुआ, बेगुनाह मर्द औरतें बच्चे, औरतों और बच्चों की तादाद ज्यादा है शहीद होने वालों में, मार दिए गए, खाक खून में गलता कर दिए गए। हमारे जवान, हमारे रेंजर्स के जवान भी जाम शहादत उन्होंने भी नोश किया। जब ये हुआ तो मैं तो मजालिस में था ना, बस मुझे खबरें मिल रही थी। जब मैं वापस पहुंचा घर तो मुझे थोड़ा सा दिल में दुख हुआ एक बात का, वो अपनी जगह शहादतों का दुख, इस बात का दुख हुआ जब मैंने ये ऐलान पढ़ा या सुना जो खबरों में दे रहे थे कि 3 दिन तक अब ये परेड नहीं होगी, मुझे दुख हुआ। मेरा दिल ये चाहता था कि नहीं, इससे तो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे दहशतगर्द, यही तो चाहते हैं कि ये ना हो, ये सब ना हो। तो हमने अपने ऊपर रख के सोचा कि भाई हमारी कौम तो ये है कि जब कोई हादसा हो तो लोग हादसे की जगह से भागते हैं, हम लोग हादसे की जगह की तरफ भागते हैं। हमारा ये, हमारी जीत का राज क्या है कि बड़े से बड़ा सानिहा हो गया, हमने मैदान नहीं छोड़ा, जिस काम से रोकना चाहते थे वो काम हमने है वो नहीं छोड़ा, हम खड़े रहे मैदान। ये तो मेरा भी दिल यही चाहता था कि ये इन्होंने क्या किया, ये गलत काम किया। दिल में किसी से कहा नहीं, मेरे दिल में ये बात उठी थी कि ये गलत किया, इनको कल परेड करनी चाहिए थी, अब तो ज्यादा। खैर दिल में रही बात, खत्म हो गई। आज दोपहर में अचानक खबरें आना शुरू हुई कि हमारे सालार ने, सालार शेर हो तो पीछे कौम भी शेर होती है, सालार शेर हो तो छोटे छोटे लश्कर बड़े बड़े लश्करों पे गलबा पा लेते हैं। कुरान मजीद ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, कम मिन फेअतिन कलीलतिन गलबत फेअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी बार ऐसा हुआ कि छोटे छोटे लश्कर, छोटे छोटे गिरोह बड़े बड़े लश्करों पे गालिब आ गए, हुआ ना। दोपहर में खबर आई, ऐलान कर दिया हमारे सालारों ने कि नहीं, जैसे कल हुआ था प्रोग्राम वैसे ही परेड आज होगी, वही होगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा खून बढ़ गया, चलो ये काम किया है मर्दों वाला कि परेड होगी वैसी। और वो हुई, जब हुई तो वो लाहौर के जिंदा दिल दौड़ पड़े, हालांकि 2-3 घंटे की बात थी, इतना बड़ा सानिहा हुआ। मगर कौम चाहती थी कि कोई आवाज तो दे, हमेशा कौम ये चाहती है कि कोई मर्द का बच्चा निकले तो सही, आवाज तो दे, शेर तो हो, भागने वाला तो ना हो। तो क्या हुआ जनाब, वो तमाम जिंदा दिलाने लाहौर और वही खवातीन, वही बच्चे सब पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे, सन्नाटा उधर था, इधर सब पहुंचे हुए थे। और फिर जब नारे लगे, 65 के बाद मैंने बॉर्डर पर ये नारा लगते देखा, 65 में लगा था, अब बॉर्डर पर मैंने देखा कि आज वो पूरे चैनल ने लाइव दिया। मसला ये है कि कितना ही हक में पर्दा डालो, हक खुद ब खुद आश्कार हो जाता है। अल्लाह ने आश्कार कर दिया। हुआ क्या कि नारे लगना शुरू हुए, सुन रहे थे, पूरे चैनल्स को लाइव देना पड़ा कि नारे तकबीर से गूंजा मैदान, नारे रिसालत से गूंजा और नारे हैदरी की ललकार, बार बार नारे हैदरी लगता रहा। आपने देखा कि इस नारे लगने से जोश कहां पहुंचा, वलवला कहां पहुंचा कि 20 करोड़ आदमियों के दिल से इन दहशत गर्दों का खौफ निकल गया, निकाल के फेंक दिया खौफ को। क्यों कि अब वो नारा गूंजा जिसकी जरूरत थी। यही तो मैं जब से कह रहा हूं कि सरहदों पे ये नारा वापस दे दो, दुश्मनों के दिल दहल जाएंगे। अली का नाम ऐसा है, अल्लाह ने खल्क इसीलिए किया कि जब मैदान जंग में जाओ तो अली को पुकारो। अल्लाह अकबर मैं सलाम पेश करता हूं अपने जवानों को, फौज के और रेंजर्स के, जिन्होंने ये फैसला किया, उन जनरलों को कि ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये डरपोक और बुजदिल सिविल हुक्मरान नहीं, ये दुकानदार, ये अपना माल बेचने वाले लोग, इन्हें तो इस बात का दुख है कि 3 दिन बॉर्डर बंद रहेगा, हमारा माल नहीं बिकेगा, कमीशन नहीं मिलेगा इन्हें। ये वो खबीस हैं, कौम फरोश लोग, मुल्क फरोश लोग, ये तो भाग जाएंगे ना, छोड़ के भाग जाते हैं, मुल्क इन्हें क्या पड़ी। ये वो हुक्मरान, इन्हें अपने माल की फिक्र है, इन्हें अपने जो वहां इन्वेस्ट किया ना, कारखाने लगाए, इन्हें उनकी फिक्र है, इनमें इतना दिल नहीं है। इसीलिए आज तक इन हुक्मरानों ने कभी भी खुलकर मजम्मत नहीं की हिंदुस्तान का नाम लेकर। डरते हैं वहां जो मिले हैं छीन लेगा नरेंद्र मोदी, कब्जा कर लेगा, वो जो कारोबार वहां किया है ना, डरते हैं, नहीं बोलते। मगर खुदा का शुक्र कि पाक फौज ने बड़े बरवक्त फैसले किए और समझ गए। अब ये क्यों हो रहा है, खुद ही कह दिया ना कि रिएक्शन हो रहा है उस ऑपरेशन का। अब मुझे बताओ कि इस वक्त मैं क्या करूं, हमारी जिम्मेदारी क्या है दहशतगर्दों के खिलाफ। हम सब एक पेज पर, शिया हो या सुन्नी हो, हत्ता के पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू और ईसाई हो, हम सबको एक पेज पर आना चाहिए कि नहीं, एक जगह जमा होना चाहिए कि नहीं। और फिर एक बार पैगाम दे रहा हूं कि ये अली अली का नारा जो आज बॉर्डर पे गूंजा है, इस नारे को इस्तिमरार दो, इसको मुसलसल लगाते रहो। ये ना समझना कि तुम्हारी फौज 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है, ये नारा लगाते रहो। अली अली का नारा लगाते रहोगे, 5 करोड़ फौज तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी। जमीन को इतना तंग कर देंगे इन दहशत गर्दों पे कि अगर जमीन में छुपेंगे, जमीन इन्हें उगल देगी कि ये रहे मारो इन्हें। ये पहाड़ों गारों में छुपेंगे, वहां से सदाएं आएंगी कि यहां बैठा है ये दुश्मन दीन, यहां बैठा है ये दुश्मन इंसानियत। अली अली का नारा तो दो वापस, फिर लाखों में नहीं करोड़ों में फौज तुमको मिल जाएगी। हम किसी के एजेंट नहीं, लेकिन क्या करें शियो, सुनो सुनो, क्यों ये बातें कर रहा हूं, इसलिए कि इमाम सज्जाद का गुलाम हूं। समझने वाले समझ गए, बाकी को भी समझा रहा हूं। चौथे इमाम के मानने वाले हैं, मुझे बताओ चौथे इमाम के दौर में हुकूमत किसकी थी, बनी उमैया की थी ना। मरवान खबीस था, इसको कह सकते हैं खबीस, क्योंकि इसको खबीस कहने से कोई बुरा नहीं मानता, कहते हाँ मरवान को जो मर्जी कहो, हालांकि कुछ दिल ऐसे हैं कि दिल में वो मानते हैं उसे अच्छा, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं कि अलल ऐलान मरवान का दिफा कर लें, लिहाजा मरवान को हमने भी इस्तियारा बना दिया, जो मर्जी मरवान को कह दो, मरवान को इस्तियारा समझ लो सारी बुराइयों का, सारी खबासतें उसमें जमा। अब मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, उसके बाद उससे बड़ा उसका खबीस बेटा वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, ये इमाम का दौर है ना। लेकिन इसी दौर में, इसी बनी उमैया के दौर में, मेरा इमाम जाके घर जाके सहीफे सज्जादिया में से दुआ निकाल लीजिएगा, सरहदों की हिफाजत के लिए जो दुआ है इमाम की, उसी जमाने में है ना, जिनकी हुकूमत में। लेकिन अपने सिपाहियों के लिए जो सरहदों का दिफा कर रहे हैं, इमाम ने दुआ की, वो दुआ जाके पढ़िएगा, अपने रजमंदिगान के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, अपने फौजियों के लिए। क्यों बाबा, हुकूमत किसी की भी हो, सरहदें तो मेरी है ना, सरहदें तो अपनी है ना। तो हर शिया ये समझ ले कि हुकूमत में ये सिविल हुक्मरान जो बैठे हैं, खबीस, बुजदिल, चोर, स्मगलर, डाकू, शकर की स्मगलिंग करने वाले, आटे की स्मगलिंग करने वाले, बिजली बेचने वाले, पानी बेचने वाले, ये हम पर ये ताजिर मुसल्लत हैं कि पूरी पूरी कौमों का सौदा करते हैं कमीशन के लिए। काहे के लिए? कमीशन के लिए। आप कहेंगे सियासत शुरू कर देते, लेकिन बार बार कहता हूं कि ये बातें ना करो तो करबला का हक ही अदा नहीं होता। इसी सिस्टम, इसी साम्राज्यत, इसी यजीदियत के खिलाफ तो कयाम किया है हुसैन ने। फिर कैसे हो कि वक्त के यजीदों को देखूं और उन्हें बेनकाब ना करूं? फौज मेरी है, सिपाही मेरे हैं, ये सरहदों पे जाने देने वाले मेरे हैं। अगरचे कि हम बहुत जख्मी हैं, हमें भी बहुत शिकायतें हैं, लेकिन जब बात आ जाए सरहदों की, जब बात आ जाए वतन की, तो शिया कुछ नहीं। तुम उसको गालियां दे लो, बुरा भला कह लो शिया को, लेकिन शिया कभी अपनी मट्टी से बेवफाई नहीं करता, शिया अपने वतन का सौदा नहीं करता। इसलिए तारीख दोहराती है, आज भी हम ही कह रहे हैं तुमसे कि बनाने वाले भी हम थे, बनाने वाले भी हम थे। खजाने में तनख्वाहें नहीं थी, पहली तनख्वाह देने वाले भी हम थे। हमारा ही दिमाग लगा है, हमारा ही खून खर्च हुआ है, हमारा ही माल खर्च हुआ है, फिर कैसे हम इसे डूबता हुआ देखेंगे? माँ से ज्यादा किसी को अपने बच्चे की फिक्र नहीं होती। लिहाजा बनाने वाले भी हम थे और इंशाअल्लाह बचाने वाले भी हम ही होंगे, इत्मीनान रखो। और अपने अहले सुन्नत भाइयों को भी बार बार यकीन दिला दो कि इत्मीनान रखो, आने तो दो एक बार। ये पाकिस्तान को इनका ऐसा कब्रिस्तान बना देंगे, ये 5 करोड़ सिपाही हैं, 5 लाख नहीं है फौज पाकिस्तान की, याद रखना, ये 5 करोड़ हैं। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और जो इनको छुपाएगा उसका भी वही अंजाम होगा इंशाअल्लाह। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें जो आपसे कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा, ये तशय्यो कह रहा है, ये शियत का ऐलान है। मेरी क्या हैसियत, घर पर पहुंचू नहीं पहुंचू आज मुझे क्या मालूम, लेकिन जान लो, इस बात को समझ लो कि मेरे जैसे 5 करोड़ हैं इस पाकिस्तान में। लिहाजा कल जो कुछ हुआ, आज जो कुछ हुआ, उसका नतीजा क्या निकला कि अचानक 20 करोड़ आदमियों को जान मिल गई। वो दहशतगर्द जो ये समझ रहा था कि ऐसे धमाके करके पटाखे छोड़ के मैं इनको डरा दूंगा, नहीं आएंगे, क्या हुआ? अगर बहादुर हो जर्नैल तो वो क्या करते हैं, उन्हीं साने हाथ को फतहा में बदल देते हैं। क्या हुआ? जिन्होंने करवाया था उधर सन्नाटा था, जिनके ऊपर हुआ था वो नारा हैदरी लगा के ऐलान कर रहे थे कि ना कल कोई हमें मार सका, ना आज कोई मार सकेगा। फिर से तीनों नारे लगाओ, तुम्हारी आवाज दब गई। अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये किसने सिखाया, किसने सिखाया? फख्र करो अपने शुहदा के लहू पर। तुम लोग 35 साल ये किरदार हमने पेश किया था, मरते गए और उनकी जगह दूसरे अलम थाम कर आगे बढ़ते रहे। एक एक वक्त में 100-150 शहीद किए गए, हम मैदान में डटे रहे। पूरी दुनिया से अपनी शजाअत का लोहा मनवाया कि कोई हमें डरा के घरों में नहीं बिठा सकता। बस ये जो कल हुआ और आज हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, आज जो कुछ हुआ ये हमसे सीखा है दुनिया ने कि फतह वो नहीं है कि जाहिरी तौर पे दुश्मन को मार दो, फतह ये है कि दुश्मन जिस मकसद के तहत ये दहशत गर्दी करना चाह रहा है उस मकसद से हाथ मत उठाना, आवाज लगाते रहना, हमें रोकना चाहा पहली से कोशिश कर रहे हैं, इधर पटाखा छोड़ दिया, उधर पटाखा छोड़ दिया। कल हमारे अहले सुन्नत भाई हलीम पका रहे थे, वहां पे भी नियाज़े हुसैन पे एक क्रैकर फेंक दिया, मगर बताओ क्या कोई रोक सका जिक्र हुसैन से? कल कुछ नहीं पता कल क्या होगा, मगर कोई शिया बेचैन नहीं है, कोई मुस्तरिब नहीं। क्यों? जानता है कि कल ही का दिन तो करबला के मैदान में हाजिरी का दिन है। कल अपने माशाल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह कल का दिन अहदो पैमान को पूरा करने का दिन है। हमने दुनिया को सिखाया कि कमिटेड लोग कैसे होते हैं, यानी मुताहिद लोग। इसका लफ्जी तर्जुमा मुताहिद का उर्दू में हो नहीं सकता जब तक दो लफ्ज़ों को ना मिलाया जाए कि अहदो पैमान किए हुए लोग, अपने वादों को पूरा करने वाले लोग कमिटेड हैं। हमने करबला के साथ कमिटमेंट किया है, अपने आका और मौला के साथ कमिटमेंट किया है, सुबह शाम उसका ऐलान करते हैं, काश करबला में होते तो इस अजीम दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। तो कल के दिन के लिए किसी शिया को कोई घबराहट है? नहीं है। पहले भी लोग आजमा चुके, पहली बात तो यह कि कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो। लेकिन अगर कुछ हो गया तो क्या होगा भाई, बाबा क्या होगा? लिहाजा ये हमारी ताकत है कि हम जानते कि कुछ भी हो जाए जुलूस अपनी मंजिल तक जरूर जाएगा। दुनिया ने देखा है फिर देख लेगी, बार बार देखती है। लिहाजा कल जब जाना है तो ये सोच कर जाना कि सर अपना है ही नहीं। परवाह जब होती है यारी, जब अपना है ही नहीं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, ये जोश यार, ये बलबला चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को पूरे, ये जोश चाहिए। लिहाजा हमारे जवानों इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो, तुम सरहदों पे अकेले नहीं हो। ये 5 करोड़ की आर्मी तो वैसे ही तुम्हारे पीछे खड़ी है, इन्हें से कोई गरज नहीं कि ये चोर बैठा है ऊपर, डाकू बैठा है कि स्मगलर बैठा है। ये जानते हैं कि ये पाक सरहदें हमारी हैं, ये पाक सरहदें हमारी हैं, ये पाक वतन हमारा है। बड़ी साजिशें की हैं इन खबीसों ने हमसायों से लड़ाने की, अमेरिका के इशारे पे, अमेरिका के इशारे पे चाहा कि जो आखिरी दोस्त हैं। और आपने देखा कि जब ऐसा वाकया हुआ तो फौरन वो संपोलिए सड़कों पे निकले नारे लगाते हुए, क्यों? साजिश है, साजिश कि आखिरी पड़ोसी को भी दुश्मन बना दो। वो तो खुदा का शुक्र है कि वहां दानिशमंद लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये साजिश हो रही, मगर हमारे हुक्मरान क्योंकि नौकर हैं, गुलाम हैं, जूते चाटते हैं अमेरिका के। तो सुनो, तुम नौकर हो, तुम जूते चाटते हो, इस 35 साल में हजारों कुर्बानियां देने के बाद हमने पूरी दुनिया में गली गली तक रुसवा किया है साम्राज्य को, रुसवा किया है वक्त के यजीदों को, पूरी दुनिया के सामने उस शैतान बुजुर्ग को बेनकाब किया जो पूरी दुनिया में फिरके वाराना फसाद कराने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। तू सबका दोस्त हो सकता है, सारे हुक्मरान तेरे नौकर हो सकते हैं, लेकिन अली के गुलाम नहीं। कल मुट्ठी भर के सुनो, मुट्ठी भर लोगों ने नारा लगाया था अमेरिका मुर्दाबाद का, अपने लोगों की भी समझ में नहीं आया था कि ये क्या कह रहे हैं। आज मैं नहीं, तुम नहीं, दुनिया में जहां भी साम्राज्य का दुश्मन शिया हो या सुन्नी, जहां भी रहता है जानता है कि सबसे बड़ा शैतान यही है, उसी के खिलाफ हर जगह नारा लगता है। वक्त के सबसे बड़े यजीद के खिलाफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
हाँ,
इतनी बुलंद आवाज से, इतनी बुलंद आवाज से कि पूरे पाकिस्तान को हौसला मिल जाए कि हम अपने दुश्मनों को पहचानते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसके अमेरिका और बरतानिया के इख्तलास से जो नाजायज औलाद वजूद में आई उसको ना भूलना, समझ गए ना? आपका जवाब बताएगा कि वो कौन है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
इस्राइल मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
इस्राइल मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद,
इस्राइल मुर्दाबाद।
यह है जिंदगी।
अल्लाह
शबे आशूर का अहदो पैमान। खुदा की कसम तुमने शबे आशूर का हक अदा किया है। अगर हुसैन के खेमे में होते तो क्या करते? यही करते ना, यजीदियत से बेजारी का ऐलान और हुसैन से वफादारी का ऐलान। यह है शबे आशूर का तकाजा कि वक्त के यजीदों को ना भूलना। सुन ले दुनिया, अब हम जैसे लोगों को मौत की क्या परवाह जो हजारों लाखों लोगों के मुंह में जबान देकर चले जाते हैं। अब मार दिए जाए तो कोई परवाह यूं नहीं होती कि जिस्म की मौत से नहीं मरता इंसान, मकसद बाकी रहना चाहिए, नारा बाकी रहना चाहिए। इतनों को मारा तुमने मगर हमें अपने रास्ते से नहीं हटा सके, इसलिए अपनी पाक फौज की तारीफ न करूं तो क्या शैतानों की करूं? अपने पाक फौज के जवानों का जिक्र न करूं क्या इन चोरों बदमाशों स्मगलरों का जिक्र करूं, कातिलों का जिक्र करूं? दर परदा दहशत गर्दों की सरपरस्ती करने वालों की तारीफ करूं? अंदर से मिले हुए हैं ये सब दहशत गर्दों के साथ, इनकी तारीफ करूं? आज मेरे जवानों को हौसला चाहिए, अपनी तहकीर की तलखियां भूलकर तुम पे तौकीर के फूल बरसाएंगे। सिर्फ मैंने एक लफ्ज कहे, शायर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसने खुद अपना नाम पोशीदा रखा है, तो तुम पे अपनी तहकीर की तलखियां भूलकर तुम पे तौकीर के फूल बरसाएंगे। हम वो लोग हैं, हमारा इतना कत्लेआम हुआ मगर हम जानते हैं कि इस दुश्मनी में कहीं अंधे ना हो जाएं, ऐसा ना हो कि तमीज मिट जाए कि किस वक्त किसका साथ देना है, किस वक्त किसकी हिमायत करना है। फिर लोग कहते हैं फौज की हिमायत करें, तो नहीं, किसकी? इन्हें चोरों की हिमायत करो, इस स्मगलरों की हिमायत करो, ये डाका जनों की रहजनों की हिमायत करो, कौमों को बेचने वाले ताजिरों की हिमायत करो, किसकी हिमायत करो? जो दहशत गर्दों से लड़ रहा है उसी की हिमायत करूंगा ना, जो दहशत गर्दों के आगे सीना सिपर है, जो उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद कर रहा है उन्हीं की हिमायत करूंगा ना। तो ये वजह मुश्तरक है मेरी, आज की बात कर रहा हूं, कल क्या होने वाला नहीं मालूम, आज की बात कर रहा हूं कि आज जरूरत है। ये हुकूमत नहीं उनकी हौसला अफजाई कर रही, ये तो अंदर ही अंदर परेशान है कि ये क्या हुआ, हमारे दोस्तों पर गोलाबारी हो रही है। ये उनके दोस्त हैं, इनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं हैं, इनके पेट में दाढ़ियां हैं, समझ में आ रही है? आले शरीफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें आल बहुत पसंद है, आले सऊद, आले फलां, आले फलां, इसलिए मैं इनको आले शरीफ कहता हूँ। जो आले शरीफ को दाढ़ी मुंडा बस समझना, दाढ़ियां हैं इनकी वही दहशत गर्दों वाली हैं मगर पेट के अंदर हैं, बाहर मुंडवा के आए ताकि उनकी हिमायत के सामान फराहम कर सके। ये उनके आमी हैं, याद रख, ये उनके सरपरस्त हैं, ये उनको रिहा करने वाले और रिहा कराने वाले। इनके एक एक वजीर ने सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया, उस खबीस दज्जाल चौधरी इफ्तिखार की सरबराही में, जो दहशत गर्दों का सबसे बड़ा सरदार था और है, ये इन शैतानी मुसल्लस था, ये मिल गए थे आपस में और उसको चीफ जस्टिस बना के हजारों दहशत गर्दों को इन्हीं ने रिहा कराया था। बस एक छोटा सा वाक्य बता के मंजिल पर आ गया। आज यही मजलिस में क्या करूं, कोई भी उन्वान दूं, मैं तो हालात के तहत तकरीर करता हूं। एक सलवार भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, एक शेयर करना चाह रहा हूं बात, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे, महफूज हो रही ना सारी बातें, इसलिए खुल के बात करता हूं इन मामलात पे। जब इस चौधरी इफ्तिखार इस दज्जाल की हिमायत में मूवमेंट चल रही थी पूरे पाकिस्तान में, याद है ना, सारे निकले हुए थे, वकील जज सब निकल आए थे। मैं तकरीर कर रहा था एक जगह, मजलिस पढ़ रहा था, मेरे पास दो हमारे भाई वकील एडवोकेट सैयद भी थे और इमामों से निस्बत भी थी, मेरे पास मजलिस के बाद आ गए और मुझे भी समझे थे कि ये कोई किसी पार्टी का लीडर होगा, जिस लहजे में चाहो बात कर लो। हालांकि मुझे लोग जानते हैं, कराची के लोग भी जानते हैं कि मैं हर शख्स से उसके पसंदीदा लहजे में बात करता हूँ, मुझे मालूम है कि किससे किस लहजे में बात करना है। आए और आके बड़े ज़रा धमकाने वाले अंदाज में कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक चल रही है इसकी हिमायत में और आप कुछ नहीं बोल रहे। मैंने कहा उस उल्लू के पट्ठे के लिए बोलो, जब पूरा पाकिस्तान उसकी हिमायत कर रहा था। मैंने कहा उस खबीस के लिए, उस कातिल के लिए, उस दहशतगर्द के लिए, मैंने कहा जो प्रोपेगेंडा करना है करो, इस जबान से उसकी तारीफ, उसकी हिमायत क्यों नहीं होगी कि मैं जानता हूं कि दहशतगर्दों का सरगना है। और वो वहां से दुम दबा के भागे जब उन्हीं ने मेरा लहजा देखा। और फिर मैंने दूसरे दिन, मुझे तो मौजू चाहिए था, दूसरे दिन उसी पे मजलिस पढ़ दी मैंने। ये ना समझिएगा कि हम नहीं बोले थे, अब बोल रहे हैं, हमारी सारी तकारीर रिकॉर्ड पर हैं इस्लामाबाद के जलसे में, जब अभी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। बस फर्क इतना था कि उस वक्त मीडिया हमारी बात दे नहीं रहा था। 2009 में हमारी स्पीच मौजूद है रिकॉर्ड पर, इस्लामाबाद के जलसे में हमने इसका नाम लेके कहा था, जिसपे हमारे भी लोग नाराज हो गए, आपने क्या किया इतने बड़े जलसे में चीफ जस्टिस को कह दिया। मेरा जलसे में तो कहने की बात है, घर में बैठ के बुराई कर ली तो कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया भाई। लेकिन बाद में क्या हुआ, सबके सामने आ गया उसका करेक्टर, बाद में जो भी बोलते रहे चैनल पे। बस फर्क ये था कि हमारी बात चैनल पे नहीं जा सकती थी, ना किसी ने बुलाकर पूछा, ना उस बातों को हाईलाइट किया, और कुछ लोगों को खूब मौके दिए गए। मगर खैर, जिसको भी दिया मौका, हमारा भाई है, हम खुश होते थे। हमारी आवाज ना सही, मगर हमारे दिल की आवाज तो आ रही है ना, आप सब समझते हैं जो कहना चाह रहा हूं। लिहाजा उन सब का हिस्सा है जिसने बात की इन चीजों में, उन सब मेरे भाइयों का हिस्सा है जो मर्दों की तरह जान हथेली पे रख के आए। तो हम तो उस वक्त भी ऐलान करें, लिहाजा इनसे तवक्कु ना कीजिएगा, इन्होंने पूरे पाकिस्तान की पीच में खंजर भोंका है। ये सबब बने हैं हमारे फौजियों की, सिपाहियों की, रेंजर्स के हो या पुलिस की शहादत की, क्योंकि इन्हीं ने पनाह दी ना, उनको पनाह ही दी शहरों में, हर जगह उनके अड्डे बनवाए। तो ये है शबे आशूर, मैंने बयान कर दी कि अगर इस रात में अहद पैमान की तजदीद ना हुई तो फिर कैसा शिया। ये अज़्म लेकर जाना है कि कल आशूर के दिन हाजिर हैं करबला में, हुसैन हम तजदीद करते हैं अपने अहद की कि हम भूले नहीं तेरे मकसद को। आज भी जहां जहां यजीदियत सर उठा रही है, हम मैदान में खड़े हैं, हम मैदान में खड़े हैं, हमने तकिया नहीं किया बातिल को ललकारते वक्त, हमने कोई तकिया नहीं किया। इसलिए आप कहते रहिए मुझे, लोग कहते रहेंगे कुछ सियासी पार्टियों के जो उनके हामी हैं, जो हामी नहीं उनकी बात नहीं करता, जो हामी वो कहते रहेंगे लो भाई फौज को मस्का लगा रहे हैं, फौज की खुशामद कर रहे हैं। जनरल जिया भी फौजी था और इससे सख्त मार्शल्ला था, उस जमाने में तो चैनल भी आजाद नहीं थे। खुदा का शुक्र है उस जमाने में भी जो चंद आवाजें बुलंद हुई ना, तो इस नहीं अपना जिक्र करना चाहिए, मगर मुझ जैसे बहुत सारे हकीर और नाचीज बंदों की सजाएं शामिल थी, उसकी सजाएं भी मिलती हैं, उसका सिला भी मिला। लेकिन याद रखिए, ये नहीं हो सकता, बात मस्का या ना मस्का लगाने की नहीं है, بات یہ کہ اس وقت دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، 20 کروڑ عوام کو، اپنے جوانوں کو یقین دلانا ہے، ان کا مورلی سپورٹ کرنی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس جنگ میں، کیونکہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، اور ہم سے زیادہ کون اس مٹی سے محبت کرے گا جبکہ اس کے چپے چپے پر ہم نے حسین کی مجلس برپا کی ہے، کیا یا نہیں؟ گاؤں گاؤں میں حسین کا ماتم کیا ہے، عباس کا علم اٹھایا ہے، ہم سے زیادہ کون اپنے اس ورثے کی حفاظت کرنا جانتا ہے کہ اس جگہ مجلس ہوئی ہے، اس جگہ ماتم ہوا ہے؟ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، ایسے وقت مار دیے جائیں، دہشت گرد مار دیں مار دیں، لیکن جیسے کل ہوا نا کہ اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے، ایک کے بعد ایک آتا جائے گا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا چلا جائے گا، جیسے کربلا میں تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ مارے جا رہے ہیں یا نہیں، بات یہ ہے کہ حق پر ہیں یا نہیں۔ مارا جانا کیا مطلب؟ کوئی نہیں مارے گا تو زندہ رہو گے؟ کیا روزانہ انتقال نہیں ہو رہے؟ جن کو نہیں مارا جا رہا وہ نہیں مر رہے کیا؟ روزانہ خبریں آ رہی ہیں۔ بات مرنے کی کیا ہے بھائی؟ مرنا ہے، بیمار ہو کے مر جاتے، ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتے، نہر میں ڈوب کے مر جاتے، کچھ بھی نہیں ہوا، چلتے چلتے، میں نے کتنے ایسے دیکھے کہ چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے۔ مرنے کا کیا ہے؟ بات ہے اس یقین کی کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موت بھی ہمیں مار نہیں سکتی، موت بھی نہیں مار سکتی، ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے، چاہے ہمارے سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر دیے جائیں، ہم زندہ ہیں۔ یہی اصول دیا کربلا میں حسین کے کڑیل جوان نے، بس میں منزل پر آ گیا، کڑیل جوان علی اکبر۔ میں کل بہت پریشان تھا کہ میں آج مجلس پڑھ پاؤں گا یا نہیں، اتنی اندرونی طور پہ کیفیت میری ایسی تھی، لیکن آج واقعہ ایسا ہو گیا تو اس واقعے نے مجھے جوش دے دیا، ولولہ دے دیا، نئی زندگی مجھے دے دی، بات کرنے کی قوت دے دی، حوصلہ دے دی، میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ اگر سفیانیت خروج کر رہی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خراسانیوں کا لشکر نہ ہو۔ بس اشارے میں ایک علامت بتا دی نا آپ کو، کربلا کے میدان میں آدھے سے زیادہ لشکر جب کٹ چکا حسین کا، گنج شہیدہ میں لٹا دیا گیا پورے لشکر کو، تو اب علی اکبر سامنے آئے اور بابا سے کہتے ہیں، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ اتنا پوچھا لیا، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے گلے سے لگا کر کہا، میرے لال ہاں حق پر ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، رسول جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں، بابا پھر کیا پرواہ، پھر کیا پرواہ، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اصول دیا نا کہ بات یہ ہے کہ حق پر ہو یا نہیں۔ تو حسین کے عزاداروں بتاؤ، حق پر ہو یا نہیں؟ ہو نا۔ علی کے غلاموں، حق پر ہو یا نہیں، پھر کیا پرواہ، کچھ بھی ہو جائے، اصل بات یہ کہ ہم نے حق کے دامن کو آج سے جانے نہیں دیا، حق کے ساتھ کھڑے ہیں کربلائے عصر میں، اور حسین کے استغاثے کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کڑیل جوان علی اکبر، ذرا سا تعارف کرا دیں، کون ہے؟ جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، تماشا دیکھنے والی عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں، آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے، ان سروں کو دیکھ رہی تھیں، علی اکبر کا سر دیکھا تو ٹھٹک کر رہی، آنکھیں جم گئیں علی اکبر کے چہرے پر، اور یہ کوفی عورتیں سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھیں، کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ اتنا حسین ہے، क्यों ना हो। जब हुसैन को नाना की जियारत का शौक होता है तो अपने अली अकबर के रुखे अनवर की जियारत कर, जिसके चेहरे की जियारत करता हो हुसैन, उसका कैसा हुस्न होगा। मदीने में जब घर से निकलते थे अली अकबर तो माँ कहती थी, बेटा चेहरे पर नकाब डाल ले, कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। जब बाजार में चल रहे होते थे तो बुजुर्ग सहाबा जवानों से कहते थे कि अगर रसूल की जियारत का शौक है तो हुसैन के इस जवान को देख लिया करो, अली अकबर को, सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में ये शबीह है, पैगंबर है। जब चलते थे बाजार में, दौड़ दौड़ कर नौजवान साथ साथ अली अकबर के चला करते थे, वे घर जाकर फख्र से बताते थे, आज हम शक्ल पैगंबर के हम रकाब थे, आज हम शबीह पैगंबर के साथ साथ कुछ देर तक चले हैं, ये है अली अकबर। लेकिन शब आशूर का मामला कुछ और है। शब आशूर यही अली अकबर है और इसकी माँ है उम्मे लैला। अम्मा अपने बेटे के बालों में हाथ से कंघी करती जा रही है, कहती जा रही है, मेरे लाल तू उम्र के इस हिस्से में है जब हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आए। अली अकबर, मेरा भी यही अरमान था लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अली अकबर देख रहा है ना, ये इतना बड़ा लश्कर जो जमा है तेरे बाबा को कत्ल करना चाहता है। अली अकबर, अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि अपने बाबा पर कुर्बान हो जा और मुझे अपनी दादी जहरा के सामने सुरखुरू कर। अली अकबर कहते हैं, मादे गिरामी इत्मीनान रखिए, कैसे हो सकता है जिसका जवान बेटा जिंदा हो उस तक कोई मुसीबत आ जाए। मैं जानता हूँ सुबह मुझे क्या करना है, मुतमईन रहिए आप। रात भर मुनाजात करते रहे अंसार हुसैनी, शब आशूर जैसे आप आमाल भी करेंगे, अज़ादारी भी करेंगे, मातम भी करेंगे, जो आमाल बताए गए वो भी पढ़ेंगे, और चलते चलते एक जुमला कहता जाऊँ कि एक बार दुआए कौशल सगीर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और नियत कीजिएगा सारे मोमिनीन के लिए यहाँ से पारा चनार तक, उनकी सलामती के लिए, अपने सिपाहियों की सलामती के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए एक बार दुआए कौशल सगीर सबकी नियत से पढ़ लीजिएगा, जहाँ इतने सारे अमाल करेंगे वहीं एक काम करेंगे। मुनाजात कर रहे हैं अंसारे हुसैनी। फज्र का वक्त हुआ, नाफे इब्ने हिलाल आगे बढ़े अजान देने के, हुसैन ने रोक दिया, नाफे आज आप अजान नहीं देंगे। दस्त बस्ता अर्ज की, मौला मुझसे कोई खता हुई क्या, आज आप मुझे अजान से रोक रहे हैं, मोहसिन थे ना हुसैन के। जनाब सीधे शुहदा ने गले से लगाया, दुआ दी, नहीं नाफे आपसे कोई खता नहीं हुई, लेकिन दिल चाहता है कि आखिरी अजान अपने नाना के लहजे में सुनो। अली अकबर को बुलाओ। अली अकबर आए, हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर जाओ आज की अजान तुम दे। अली अकबर गुलदस्ते अजान की तरफ चले, लम्हे भर में यह खबर खेमों में फैल गई, बीबियों को बच्चों को मालूम हो गया कि आज की अजान अली अकबर दे। इधर अली अकबर ने अल्लाह अकबर कहा, उधर खेमों में बीबियां पछाड़े खाने लगे। सब जानते हैं कि अब ये आवाज दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। नमाज फज्र तमाम की अंसारे हुसैनी ने, हमले आम हुआ, पशपा किया हुसैन के जानिसारों ने, आधा लश्कर शहीद हो गया इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन रोक दिया, हमला पशपा कर दिया। तन बतन जंग की बारी आई, सबसे पहले अली अकबर आए, बाबा मैदान में जाओ, हुसैन ने कहा जाओ बेटा, सबसे पहले अली अकबर को इजाजत दी। मगर अली अकबर कैसे जा सकता है मैदान में, अंसारे हुसैनी ने सफ़े बांध दी, मौला ये कैसे होगा कि हम जिंदा हों अली अकबर मैदान में चला जाए, क्या मुंह दिखाएंगे आपके नाना को, अली अकबर नहीं जा सकता हमारे होकर, नहीं जाने दिया। अंसार हुसैनी ने वादा वफा किया। फिर अली अकबर आगे बढ़े, बाबा मैदान में जाऊं? हुसैन ने कहा जाओ। औलाद अकील और जाफर सामने आ गए, कभी हसन के बेटे, कभी अली के बेटे, कभी मुस्लिम के बेटे, किसी ने जाने नहीं दिया अली अकबर को। यहां तक के अली अकबर को रोकने वाला भी कोई ना रहा। अजीब मंजिल है हुसैन की। अब अली अकबर आए, बाबा मैदान में जाऊं? अब तो कोई भी नहीं बचा। मेरा दिल कहता है कि जब अली अकबर ने कहा होगा बाबा मैदान में जाऊं, तो हुसैन ने कभी गाय देखा होगा कभी माए, शायद कोई आगे बढ़कर कह दे मौला अली अकबर ने। लेकिन अजादारों, हुसैन कैसे रोकेगा अपने बेटे को? सबके लाशें तो हाथों पर उठा के लाया है हुसैन, अपने बच्चे को कैसे रोकेगा? मगर हाँ, इतना जरूर कहा अली अकबर, पहले माँ से रुख्सत हो ले, माँ से इजाजत ले ले, फिर मैदान में चले जा। अली अकबर आए जनाब उम्मे लैला के खेमे में, और आने के बाद कहते माजरे गिरामी, मैदान में जाना है, आपकी इजाजत दरकार है, आखिरी सलाम के लिए आए। बेटा भी नहीं लाना, नहीं लाना, जब तक आखिर तक ना हो जाए, अली अकबर की शहादत पढ़ने के लिए मैं इंतजार करता हूँ एक साल तक। लिहाजा आखिरी सलाम के लिए आया हूं, आपकी इजाजत दरकार है। बड़े इत्मीनान से उम्मे लैला फरमाती हैं, बेटा मैं रोकने वाली कौन हूं? जिस फूफी ने पाल कर परवान चढ़ाया है उससे इजाजत ले। कितनी मुतमईन है जनाब उम्मे लैला। अभी कुछ देर बाद आपको बताऊंगा कि जनाब उम्मे लैला पर क्या गुजरी थी, और जब तक जनाब उम्मे लैला का हाल ना पढ़ लूं मेरे बच्चों, इस ताबूत को अंदर ना लाना कि क्या हुआ जनाब उम्मे लैला का हाल आखिर में। अभी बड़े इत्मीनान से इजाजत दे दी, जा बेटा जिस फूफी ने पाला है उससे इजाजत ले। फूफी के खेमे में आए, सलाम किया सानिया जहरा को अली अकबर ने। ज़ैनब ने जवाब दिया मगर मुंह फेर लिया। अली अकबर कहते हैं, फूफी अम्मा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आए हों और आपने मुंह फेर लिया, क्या आपके अली अकबर से कोई खता हुई? सानिया जहरा फरमाती है, मेरे लाल अली अकबर, भला तुझसे किसी खता का इम्कान है? नहीं मेरे लाल, तुझसे कोई खता नहीं, मगर मैं जानती हूं कि इस वक्त तू किस इरादे से आया। अली अकबर, तेरी जवानी बचाने के लिए मैंने ओनो मोहम्मद को सदका किया। अजादारों, ज़ैनब जानती है कि अली अकबर क्या है मेरे भाई हुसैन के। जज़ाकुम रब्बुक। सुनो अजादारों, सुनो तसल्ली से, सुनो अली अकबर की शहादत। अली अकबर कहते हैं, फूफी अम्मा इत्मीनान रखिए, जब तक आप इजाजत नहीं देंगी मैं मैदान में नहीं जाऊंगा। मुतमईन हो गई ज़ैनब। जब मुतमईन हो गई फूफी, अब अली अकबर कहते हैं, फूफी अम्मा अली अकबर का एक मसला हल कर दीजिए, एक मसला दरपेश है आपके अली अकबर का। बेटा इस वक्त में तेरा कौन सा मसला हल कर सकती हूँ? बस फूफी अम्मा ये बता दीजिए कि आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी जहरा का। घबरा के कहती है सानिया जहरा, मेरे लाल ये तूने कैसा सवाल कर दिया? कहां वो सैयद ए निसाए आलमीन, कहां मैं अदना सी कलीज, भला कोई मुकायसा है, कोई मुवाजना है? अब अली अकबर कहते हैं, फूफी अम्मा फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिए, अगर कयामत के दिन मेरी दादी जहरा ने आपसे पूछ लिया ज़ैनब अपने अली अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन बदलोगे? क्या जवाब देंगे? ज़ैनब को प्यार आ गया अपने अली अकबर, गले से लगाए, पेशानी के बोसे दिए अपने बच्चे, रो रही है ज़ैनब। अली अकबर, जा अब मैं तुझे नहीं रोकूं, अब मैं नहीं रोकूं। दो ही रुख्सतें हैं करबला में, दो। बेटा बैठे रहो, बच्चों कोई ना उठो, देखो मुझे शहादत पढ़ने दो अली अकबर की, तुम्हें अली अकबर का वास्ता दे दो, बैठ। सुनो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरे बच्चों सुनो, दो रुख्सतें हैं बस, या हुसैन की है या अली अकबर की। बहुत देर तक जब हुसैन के खेमों से कोई न निकला, पिसरे साद ने हमीद बिन मुस्लिम को भेजा, जा खबर तो लेकर, कोई आ नहीं रहा मुकाबले के लिए। हमीद बिन मुस्लिम खयाम हुसैनी के करीब हुआ, कहता है कि मैंने देखा खेमे का पर्दा उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया, 70 बार खेमे का पर्दा उठा और गिर गया। जब मैं अहवाल जानने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जवान राना जवान कड़ियल जवान जिसके चेहरे पर निगाह नहीं ठहरती, ऐसा हुस्न, निकलने की कोशिश करता है बीबियां वापस खींच लेते। अब मुझे नहीं मालूम कभी माँ खींच लेती होगी मेरे लाल अली अकबर एक बार और रुखे अनवर की जियारत कर, कभी फूफी खींच लेती होगी मैं बारी में सदके अपने अली अकबर के, कभी कोई छोटी सी बच्ची कदमों से लिपट जाती होगी भैया न जाओ न जाओ, जो गया वापस पलट कर नहीं आया, मुझे पानी नहीं चाहिए, बैठे रहो अभी मुझे शहादत पढ़नी। हुसैन बाग थाने खड़े, सवार कराया अली अकबर को, जाओ बेटा बेटा बैठे रहो, मैंने कहा है मुझे शहादत पढ़ने दो, बैठ जाओ, अभी ताबूत नहीं आया, बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते बाहर चले जाओ, बैठ जाओ, मुझे अली अकबर का पुस्सा देना, और ये पुस्सा हमेशा मैं हुसैन को देता हूँ, हुसैन को देता हूँ अली अकबर का पुस्सा। अली अकबर चले, कुछ दूर चले थे, एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, इस लोबान को पीछे रखो, इसकी वजह से लोग परेशान हो गए। देखा कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, अब जो मुड़कर देखा अली अकबर ने तो क्या देखा, बूढ़ा बाप दोनों हाथों में अली अकबर उतर आए, घोड़े से उतर आए, वापस पड़ गए, बाबा के हाथ थाम कर कहते बाबा आप तो मुझे रुख्सत कर चुके, अगर इस तरह मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे झक कर। हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, कहते मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह मरने के लिए जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत तो समझ सकता था, मेरे लाल जा, चला जा, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता था। गए अली अकबर, जिधर जिधर अली अकबर हमला करने जाते थे हुसैन उसी शब्द में दौड़ना शुरू कर देते। अली अकबर दरमियान में आए भी वापस भी गए, अब वो वक्त आया जब हुसैन का चांद हुसैन का बद्र शाम की सिया बदलियों के घेरे में आ गया, गहना गया हुसैन का अली अकबर, आवाज देते अली अकबर किस तरफ है, अली अकबर आवाज तो सुन रहा है बाबा की मगर कैसे बताए बाबा तेरे अली अकबर के हाथ।